उसके ये शब्द सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। माहिरा के चेहरे पर सुकून आ गया, जुबेदा बेगम की आंखों में चमक, आफताब संतुष्ट नजर आया और रिदा उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सब खुश थे, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। मगर उस भीड़ में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसकी मुस्कान के पीछे कोई और ही कहानी छुपी थी, अरमान, जिसने हाँ तो कह दी थी मगर उसका दिल अब भी कहीं और अटका हुआ था। ये मेरी तरफ से हाँ है, बाकी जो बातें तय करनी हो आप खुद ही कर लें। इतना कहकर अरमान वहां से उठकर चला गया। उसके चेहरे और लहजे से साफ झलक रहा था कि उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके जाते ही माहौल कुछ पल के लिए ठहर सा गया। जुबैदा बेगम और रेहाना बेगम ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। दोनों हल्की मुस्कान के साथ ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन सच तो सबने देख लिया था। आफताब को ये सब थोड़ा अजीब लगा। वो चुप हो गया और नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखा। रेहान ने भी मुस्कुराकर उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अब तो हम रिश्तेदार बन गए, उसने हल्के से कहा। दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, लेकिन ये खुशी असली कम और दिखावा ज्यादा थी, क्योंकि अरमान का रवैया सबकी आंखों में चुप चुका था। रात को रेहान छत पर आ गया। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन उसके अंदर बेचैनी थी। उसका मन बार बार नूर की तरफ जा रहा था। उसने फोन निकाला। नूर को भेजे गए मैसेज अब डिलीवर हो चुके थे। वो कुछ पल स्क्रीन को देखता रहा, फिर खुद से बुदबुदाया, मतलब फोन तो उसके पास है, तो बात किससे कर रही थी तुम नूर? उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था और उससे भी ज्यादा बेचैनी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अरमान छत पर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रेहान पर पड़ी वो बिना कुछ कहे वापस मुड़ने लगा। अरमान, रेहान की आवाज ने उसे रोक लिया। वापस क्यों जा रहे हो, आओ बैठो। अरमान ठहरा लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। एक काम याद आ गया है, उसने बहाना बनाया। रेहान हल्का सा मुस्कुराया। जो काम याद आया है वो यहीं बैठकर भी किया जा सकता है। अब अरमान के पास मना करने का कोई बहाना नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था वो रेहान के पास बैठना नहीं चाहता। रेहान ने सीधा सवाल किया, क्यों, मेरे पास बैठने में कोई प्रॉब्लम है? अगर आप बहस करने आए हैं तो मैं साफ बता देता हूँ मेरा कोई मूड नहीं है, अरमान ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में अब भी वही नाराजगी थी गेस्ट हाउस वाली बात की। रेहान हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में तंज था। जो कुछ ऑफिस में हुआ था उसके बाद तुम्हारा ये कहना बनता है? वो उसी दिन की बात कर रहा था जब उसने लोकेशन दिखाकर साबित किया था कि अरमान की गाड़ी पूरी रात गेस्ट हाउस में थी। अरमान की हंसी इस बार कड़वी थी। वाह, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं वाकई मुलजिम था, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपको तो शर्म आनी चाहिए थी मुझ पर गलत इल्जाम लगाने के लिए। रेहान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मेरा एविडेंस गलत नहीं था, उसने एक एक शब्द दबाकर कहा। तुम्हारी गाड़ी पूरी रात गेस्ट हाउस में थी, ये सच है ना? एक पल की चुप्पी। छोड़िए, अरमान ने नजरें हटाई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो मुड़कर जाने लगा। रुको अरमान, रेहान की आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी। जब बात शुरू कर ही दी है तो खत्म भी करो, वो उसके करीब आता हुआ बोला। या फिर ये बताओ, ये सब तुम मेरा बदला लेने के लिए कर रहे थे? अरमान तुरंत पलटा। मैं आपसे बदला नहीं ले रहा था, उसकी आवाज अब भारी थी। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा था। दोनों की आंखें टकराईं, हवा जैसे थम गई। रेहान ने हल्के से कंधे उचका दिए। मुझे क्या पता, उसने लापरवाही से कहा। हो सकता है फिर से किसी की बातों में आकर मेरे सामने खड़े हो जाओ लड़ने। अरमान की आंखों में इस बार ठंडा दर्द था। आपको लगता है मैं दोबारा किसी पर एतबार करूंगा? रेहान ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से वार किया। हो सकता है, उसने जानबूझकर नूर का नाम लिया। अभी भी नूर का फोन आए और तुम्हारा दिल पिघल जाए। बस यही वो बात थी। अरमान के चेहरे की सख्ती एक पल को दरकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रेहान चुप रहा, पर उसकी नजरें सब पढ़ रही थीं। असल में वो सिर्फ एक बात जानना चाहता था, क्या नूर ने फोन खोला था और क्या उसने अरमान से बात की थी। वैसे तो मुझे अपनी पर्सनल बातें आपको बताना जरूरी नहीं लगता, अरमान ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, लेकिन ताकि आप ये सवाल दोबारा ना करें मैं बता देता हूँ मैं उसका नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर चुका हूँ। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अच्छा किया, रेहान ने सिर हिलाते हुए कहा। रिदा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अरमान की नजरें ठंडी हो गईं। मुझे अपना ख्याल रखना आता है, उसके लहजे से साफ था उसे रिदा में कोई दिलचस्पी नहीं। रेहान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो तुम मुझे अपनी फिक्र करने से रोक रहे हो? अरमान ने सीधा जवाब दिया, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। रेहान की भौहें हल्की सिकुड़ी। क्यों, मेरी जिंदगी को क्या हो जाएगा? अब वार अरमान की तरफ से था। आप सादिया को तलाक की धमकी दे चुके हैं, रेहान थोड़ा असहज हुआ, फिर सफाई देते हुए बोला। वो नूर की वजह से, उसने नजरें हटाई। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया।
अरमान की आंखों में हल्की सी चुभन आई। मेन टू मेन वाला शब्द भी ऐसे ही निकला था मेरे मुंह से, उसी सिचुएशन में। दोनों के बीच फिर वही खामोशी, इस बार भारी और सच्चाई से भरी। रेहान ने गहरी सांस ली। वो समझ गया था अरमान अब भी उससे दूर खड़ा है। उसने लहजा नरम किया, चलो यार छोड़ो। वो थोड़ा करीब आया और बैठते हुए बोला, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद अरमान भी आकर उसके पास बैठ गया। रेहान ने धीरे से कहा, आखिर हम भाई हैं। उसकी आवाज में पहली बार सच्चाई थी, कोई तीसरा हमें अलग नहीं कर सकता, खून का रिश्ता है हमारा। अरमान चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल था, क्या सच में, या ये रिश्ता भी किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। रेहान की आवाज इस बार मजबूत थी, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, भाई हैं हम। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा हो, मैनिपुलेट करना तो उसका काम है, जैसे उसकी माँ करती थी। फिर उसने अरमान की तरफ देखा, मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा। लेकिन अरमान चुप था, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, पर अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। सच तो ये था, उसका भरोसा अब सिर्फ एक इंसान से नहीं टूटा था, हर रिश्ते से उठ चुका था। रात, रेहान अपने कमरे में आया, कपड़े बदले और बिस्तर पर आकर लेट गया। सादिया गहरी नींद में थी, लेकिन रेहान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, नूर। अगर आज अरमान से उसकी बात नहीं हुई, वो छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था, तो फिर नूर ने फोन किसे किया? उसका माथा हल्का सा सिकुड़ गया। क्या फैजान? अगले ही पल उसने खुद ही उस ख्याल को झटक दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नूर फैजान को क्यों कॉल करेगी? लेकिन सवाल वहीं का वहीं था और अब और भी गहरा हो चुका था। उसने करवट बदली, नींद अभी भी नहीं आ रही थी। रेहान उठा, धीरे से खिड़की का पर्दा साइड किया। बाहर काली रात फैली हुई थी, खामोश लेकिन बेचैन, उसी की तरह। तभी दरवाजा खटका, रेहान ने पलट कर देखा, दरवाजा खुला और नौकरानी अंदर आई। छोटे साहब, उसने धीमे से कहा। बड़े साहब, सादिया बीबी को बुला रहे हैं। रेहान ने एक नज़र सादिया की तरफ देखा, वो अभी भी सो रही थी। उन्हें कह दो वो सोई हुई है, उसने हल्के से जवाब दिया। वो सिर हिलाकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। रेहान वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, नूर तुमने फोन किसे किया?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना भी याद रखें। तो प्लीज लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए।